थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। मित्रों, इस पुस्तक में अब तक हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्याय 19 उसके 8 पद तक का अध्ययन किया है। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 उसके 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। मेरे मित्रों, अब मेरी बात पर आप ध्यान दें और ध्यान से सुने। मेमने का विवाह स्वर्ग में होगा, परंतु विवाह भोज पृथ्वी पर होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 1 से 13 पद में इसका चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दृष्टांत 10 कुंवारियों का है। ये कुंवारियां दुल्हन नहीं थी, मसीह की एक ही दुल्हन है और वह है कलीसिया। दुल्हा विवाह भोज के लिए पृथ्वी पर लौट कर आएगा। वह पृथ्वी का न्याय करने के लिए ही नहीं, परंतु विवाह भोज में सहभागी होने के लिए भी आएगा। ये 10 कुमारियां इसी विवाह भोज में सहभागी होने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी दृश्य का उल्लेख भजन संहिता उसके 45 में किया गया है। इस भजन में प्रभु यीशु को आगंतुक राजा दर्शाया गया है। भजन संहिता 45 उसके 9 में लिखा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी हैं। मेरे विचार में यह कलीसिया का प्रतीक या रूपक है। वहां अतिथि भी हैं। भजन 45 उसके 12 में लिखा है, सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी, प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। विवाह का जो भोज है जिसे आयोजन किया गया है और वह है पृथ्वी पर। इसराइली और प्रभु राज में प्रवेश करने वाले अन्य जाति आमंत्रित अतिथि होंगे। यह विवाह भोज वास्तव में प्रभु राज में होगा। जी हां, यह एक दीर्घकालीन भोज होगा। प्रभु राज के अंत में भी कलीसिया दुल्हन ही दिखाई देगी, परंतु यह तो आरंभ ही होगा। यह हमारे लिए कैसा आनंद की बात होगी। इस दृश्य पर परमेश्वर का स्वर्गदूत मुहर लगा देता है, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। मेरे मित्रों, इस दृश्य का विवरण लिखने के बाद यूहन्ना उस स्वर्गिक संदेश वाहक की आराधना करने पर विवश हो जाता है, परंतु उसे ऐसा करने से रोका जाता है, क्योंकि स्वर्गदूत भी एक सृजित प्राणी है। केवल परमेश्वर ही की आराधना करना है। शैतान ख्रिस्त विरोधी के लिए यह कैसी झिड़की है, और झूठे भविष्यद्वक्ता को भी जो अपनी पूजा करवाना चाहते हैं। आज कुछ मनुष्यों की भी यही मनोकामना है। स्वर्ग में मेमने के विवाह के बाद की महान घटना है पृथ्वी पर मसीह का आगमन। मेरे प्रियो, राज्य आने वाला है, परंतु कलीसिया के उठाए जाने और पृथ्वी पर महाक्लेश तक का वह समय अभी नहीं आया है। जब वह पृथ्वी पर आएगा तब उसकी दुल्हन उसके साथ होगी और विवाह भोज यहां पृथ्वी पर दिया जाएगा। हमारे सामने यह कैसा महिमामय दिन है। काश हम अपनी आंखें पृथ्वी के दलदल और कीचड़ से हटाकर अनंत जीवन की ओर लगा पाते। मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मसीह का पुनः आगमन, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। यह कैसा कप कपाने वाला दृश्य है। इसे पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वह चरण सीमा की घटना है जिस ओर आज संसार की हर एक बात अग्रसर है। यह पृथ्वी पर प्रभु यीशु का पुनः आगमन है। मेरे प्रियो, मैं आपको समझाता हूं कि यह परिदृश्य में कहां सही बैठेगा। अध्याय 4 से 18 में हम महाक्लेश के मध्य थे, एक भयानक दृश्य जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के राज्य के आगमन के साथ समाप्त हुआ। भविष्य संबंधित एक अबोध विचार जो बाइबल के अज्ञानी आज भी मानते हैं, एक दिन प्रभु यीशु फिर आएगा और मरे हुए लोग सब जी उठेंगे। अच्छे लोग एक ओर होंगे और बुरे लोग दूसरी ओर। प्रभु यीशु के निर्णयानुसार एक समूह स्वर्ग में जाएगा और दूसरा नरक में जाएगा। इस प्रकार अनंत जीवन का आरंभ होगा। यह एक अबोध विचार है। आप परमेश्वर की योजना और उसके कार्यक्रम के बोध बिना धर्मशास्त्र का मनन नहीं कर सकते हैं। वह अपनी योजना पर यथा उचित अग्रसर है। उसकी योजना, जैसा हमने देखा है, उसके राज्य की स्थापना से पूर्व महाक्लेश के समापन के तुरंत बाद वह इस पृथ्वी पर आएगा। उसके प्रथम आगमन की तुलना में उसका दूसरा आगमन अत्यधिक विस्मयकारी है। यह पूर्ण रूपेण आश्चर्यजनक है। जॉर्ज मैकडोनल्ड उसके प्रथम आगमन के विषय में कहते हैं, वे सब एक राजा के आगमन की प्रतीक्षा में थे कि उनके शत्रु का संहार करके उन्हें ऊंचा उठाए। तू आया परंतु एक शिशु रूप में, जिसके कारण एक स्त्री को वेदना हुई। मेरे प्रियो, यह उसका पृथ्वी पर प्रथम आगमन था। वह दीन और नम्र था। वह पापियों के लिए मरा और वह एक मुक्तिदाता हुआ। इस पद में हम उसे महिमा से पूर्ण आता हुआ देखते हैं। उसका दूसरा आगमन इस पापी संसार पर परमेश्वर के प्रकोप को उंडेला जाना होगा। शैतान, दुष्ट आत्माओं और मनुष्यों का विद्रोह दबाया जाएगा और उन्हें दंड दिया जाएगा। अपने धार्मिकता के राज्य की स्थापना करने से पूर्व वह संपूर्ण अधर्म का दमन करेगा। अध्याय 4 पद 1 में स्वर्ग खुला हुआ है और यूहन्ना को कलीसिया का प्रतिनिधि होकर प्रवेश करने दिया जाता है और वह वहां प्राचीनों को अर्थात कलीसिया को देखता है। अब यहां अध्याय 19 में स्वर्ग खुलता है कि प्रभु यीशु प्रस्थान करे, जिसे श्वेत घोड़े पर प्रभु यीशु को सवार हुआ देखा गया है। वह युद्ध का घोड़ा है। पहली बार जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था तब वह गधे पर सवार होकर यरूशलेम को गया था। गधा राजाओं की सवारी थी, परंतु युद्ध का प्रतीक नहीं था, वह शांति का द्योतक था। कहता है कि वह विश्वास योग्य कहलाता है क्योंकि वह परमेश्वर की दीर्घकालीन योजना को पूरा करने के लिए आएगा। आपको स्मरण होगा कि ठट्ठा करने वाले कहते हैं कि उसके आगमन का चिन्ह कहाँ है। अब यहां चिन्ह नहीं, वह स्वयं ही आता है। उसने पूरा किया है उस कार्य को जिसे उसने कहा था, वह विश्वास योग्य है। जी हाँ, एकमात्र वही है जिस पर आप और मैं पूरा भरोसा कर सकते हैं और निर्भर रह सकते हैं। कहता है वह सत्य कहलाता है क्योंकि जन्मसिद्ध सत्य है और वही जन्मसिद्ध अधिकार भी रखता है। वह सच ही नहीं कहता, वह सत्य का मानक है, वह सत्य का मापदंड है, वह स्वयं सत्य है। वह कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। यह एक अति महान बात है कि आपके पास आज विश्वास करने योग्य कोई है, जबकि आज संसार में हम जो कुछ भी सुनते हैं वह विकृत है, झूठा प्रचार है। यहां पर लिखा है वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। इस बार वह क्रूस पर जान देने के लिए नहीं आएगा। मेरे मित्रों ध्यान दें कि वह मरने के लिए नहीं परंतु न्याय करने के लिए आएगा। लिखा है उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं। अध्याय 1:14 में उसकी आंखें आग के समान थी जब वह कलीसियाओं के मध्य विचरण करके उनका न्याय कर रहा था, परंतु यहां अंतर है, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और वह पृथ्वी का न्याय करने और अधर्म का दंड देने के लिए आएगा। तब आगे लिखा है उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का वही एकमात्र शासक होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वही इस पृथ्वी पर एकाकी शासक होगा। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करते, यदि वह आपका उद्धारकर्ता नहीं है और यदि आप उसके पुनः आगमन तक जीवित रहें, तो वह आपके लिए सबसे अधिक असुविधा का युग होगा, क्योंकि प्रभु यीशु एकमात्र शासक होगा। उसकी अनुमति के बिना मुर्गी का बच्चा आंख नहीं खोलेगा, मुर्गा बांग नहीं देगा, मनुष्य एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए कहता है उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं जानता है। यह क्या नाम है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता है? यहां उसके चार नाम दिए गए हैं जो सुसमाचार वृत्तांतों से मेल खाते हैं। पहला है राजाओं का राजा, मत्ती समाचार में उसे राजा दर्शाया गया है। और दूसरा है विश्वास योग्य और सत्य, मरकुस रचित समाचार में उसे परमेश्वर का दास दर्शाया गया है। दास के लिए वंशावली नहीं, उसकी विश्वास योग्यता महत्वपूर्ण होती है। क्या वह विश्वास योग्य और सत्य है? यही उसके महत्वपूर्ण गुण है। और तीसरी बात है परमेश्वर का वचन। यहोनर समाचार में यही तो कहा गया है, आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1-14। और चौथी बात हम देखते हैं, यह कौन सा नाम है जो कोई नहीं जानता? मेरा एक सुझाव है, संभवतः यह लूका रचित सुसमाचार के सदृश्य है, जहां उसे अर्थात यीशु मनुष्य का पुत्र कहा गया है। आज इस नाम का वृहत उपयोग किया जाता है शपथ खाने में, निंदा करने में और उसके साथ निसंकोच तथा दुस्साहसी व्यवहार करने में। लोग उसके नाम को गलत उपयोग में लेते हैं, परंतु मेरे मित्रों यही वह नाम है जिसकी हम अनंत काल में जानकारी प्राप्त करेंगे। वह मनुष्य का पुत्र और कोई नहीं परंतु यीशु है। क्या आप यीशु को सच में जानते हैं? पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता है। और यहां हम देखते हैं कि जब वह आएगा तब उसका एक नाम होगा जिसे केवल वही जानता है, मनुष्य नहीं। प्रेरित पौलुस ने अपनी सेवा के आरंभ में नहीं, अंत में अपने मृत्यु दंड से पूर्व कहा था, फिलिपियों की पत्री 3:10 में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पिता को छोड़ पुत्र को कोई नहीं जानता है। उसे जानने का अभ्यास स्वर्ग को वास्तव में स्वर्ग बना देगा। यह ऐसी अद्भुत बात है कि संपूर्ण अनंत जीवन उसको समझने में लग जाएगा। यहां तो मनुष्य को जानकर उत्साह उत्पन्न नहीं होता है। होता है क्या? नहीं, परंतु यीशु को हम जितना अधिक जानेंगे उतना ही अधिक वह उत्साहजनक होगा हमारे जीवन के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 7 और 9 पद में लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिर अपनी महायाजकीय प्रार्थना में प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 3 पद में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब हमारी शिक्षा आरंभ हो जाती है। उसे जानने पर हमारी केजी कक्षा आरंभ होती है। और मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहता हूं, अपनी कलीसियाई सेवा में और सेवकाई में आगे बढ़ने पर हमें एक लक्ष्य होना चाहिए, और एक लक्ष्य मैंने भी साधा है। मैं आज जितना प्रभु यीशु को जानता हूं उससे और अधिक उससे जानने की लालसा करता हूं। मैं प्रतिदिन सुबह सोकर जागता हूं तो अपनी खिड़की से बाहर देखता हूं और कहता हूं, हे प्रभु, एक और दिन दिखाने के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि तू बहुत दूर है, मैं तुझे जानना चाहता हूं, काश परमेश्वर का आत्मा मुझ पर तुझे यथार्थ में प्रकट करे और मैं करीब आ जाऊं। यीशु नाम, ओह, इसका क्या अर्थ है और वह कैसा व्यक्ति है? इस विषय पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। हम प्रभु को अनंत जीवन में और अधिक नहीं जानेंगे, हम एक दूसरे को भी और अधिक जानने पाएंगे। मेरे विचार में तो हम इस समय एक दूसरे को वैसा नहीं जानते जैसा जानना चाहिए। मेरा यह अनुभव है कि लोग मुझे कभी कभी बहुत गलत समझ लेते हैं। मैं रेडियो पर कुछ कहता हूं तो कभी कभी उसकी प्रतिक्रिया में मुझे पत्र मिलते हैं जिन्हें पढ़कर मैं स्तब्ध रह जाता हूं। यह समझना मेरे लिए कठिन है कि लोग मुझे ऐसे कैसे गलत समझ लेते हैं। परंतु स्वर्ग में हम वैसे ही जाने जाएंगे जैसे हैं। मेरे विचार में यह बहुत अच्छा है। हम स्वयं को भी जानेंगे कि हम क्या हैं, हम अपने प्रियजनों को भी जानेंगे। एक बार मैं अपने बीमार अवस्था से स्वस्थ लाभ हेतु तो विश्राम कर रहा था। वह ग्रीष्मकालीन का समय था। मुझे अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने और उससे अधिक जानने का अवसर प्राप्त हुआ। वह बहुत अच्छा समय था। मुझे उसके आत्मत्याग और वर्षों की जो सेवा है समझने का अवसर मिला। स्वर्ग में तो मैं उसे और अधिक अच्छी तरह से जानूंगा। मेरे मित्रों, स्वर्ग कैसा महिमामय वातावरण होगा? इस पृथ्वी पर भी हम जानते हैं कि प्रभु यीशु को अधिकाधिक जानने से हम एक दूसरे को अधिकाधिक प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि जितना अधिक हम उसे जानेंगे उतना ही अधिक उसका स्वभाव हम में आता जाएगा। अब प्रभु यीशु के पुनः आगमन का और एक अधिक वर्णन है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 13 से 16 पद में लिखा हुआ है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, कहता है कि वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है। इससे हमें यशायाह नबी के पुस्तक 63 अध्याय उसके 1 से 6 का स्मरण आता है, जिसका संदर्भ हम पहले भी दे चुके हैं। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान हैं? मैंने तो अकेले ही हौद में दाखे रौंदी है। हाँ, मैंने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि यह प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के संबंध में नहीं है, यह उसके दूसरे आगमन के बारे में है, जैसा यहां अध्याय 19 में व्यक्त किया गया है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। इसी संदर्भ में देखिए भजन संहिता 2 उसके 6 से 9 में, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मेरे प्रियो, उसके दूसरे आगमन, उसके क्रोध की प्रचंडता उसके प्रथम आगमन की दीनता के सर्वथा भिन्न है, तथापि दोनों ही में मेमने का क्रोध प्रकट किया गया है। कहता है स्वर्ग की सेना, यह स्वर्गदूतों की सेना है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अब हम आगे देखते हैं हर्मगिदोन का युद्ध। अब हम हर्मगिदोन के युद्ध के अंत में आते हैं जो अंतिम युद्ध का समापन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। मेरे प्रियो, यदि धर्मशास्त्र का कोई अंश पढ़ने के लिए अस्वीकार्य है तो वह यही है। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इसे अपने वचन के अंत में रखा है कि हम समझ पाएं कि शरीर के काम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे घृणित एवं तुच्छ हैं। दैहिक मनुष्यों की देह नष्ट हो जाएगी, यह नरभक्षी पक्षियों को पृथ्वी पर दावत दी गई है कि वे पृथ्वी के राजाओं और शूरवीरों का उत्तम मांस खाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से विद्रोह करना भयानक बात है, वह एक दिन आपका न्याय करेगा। इस दृश्य में दर्शाया गया है कि मनुष्य का मन कैसा बुरा एवं दुष्ट है। अब हम आगे देखते हैं नरक खोला गया। यह पहली बार है कि नरक पूर्ण रूप से खोला गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 19 से 21 पद में आगे लिखा है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। मेरे मित्रों, यह कैसा भयानक दृश्य है। पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता अंतिम सीमा तक परमेश्वर को चुनौती देते हैं। वे परमेश्वर के पुत्र से युद्ध करने का साहस करते हैं। वह जो स्वर्ग में विराजमान है उन पर हंसेगा, उनके प्रयासों की निसारता पर हंसेगा। परमेश्वर से ऐसा विरोध करना मूर्खता ही है। इसका परिणाम अवश्यंभावी है। दो प्रधान विद्रोही एवं निरंकुश शासक, ख्रीस्त विरोधी तथा झूठा भविष्यद्वक्ता निसंदेह नरक में डाले जाने वाले पहले दो मनुष्य हैं। शैतान भी अभी तक नरक में डाला नहीं गया है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या आग की झील वास्तविक है? मैं आपको सोचने के लिए एक विषय देता हूं, क्योंकि हम इसकी चर्चा अध्याय 20 में करेंगे। यदि नरक वास्तविक नहीं है तो यह गंधक की आग से अधिक भयानक स्थिति का प्रतीक है। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी। यह कैसी तलवार है? मेरा एक मित्र जो प्रभु के हजार वर्षीय राज को नहीं मानता है, ठट्ठा करते हुए कहने लगा, आप यह तो नहीं कहेंगे कि प्रभु यीशु के मुंह से वास्तव में तलवार निकलेगी? मैंने कहा कि मैं तो उसे वास्तविक ही मानूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि वह साधारण तलवार है। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और तब इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यशायाह नबी भी कहता है 11 अध्याय के 4 पद में, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। देखिए धर्मशास्त्र कैसी स्पष्टता से इस चिन्ह को व्यक्त करता है। प्रभु यीशु के मुख से निकलने वाली तलवार उसका वचन है, उसके वचन ही से जो जगत की रचना हुई है जिसे हम आदि में देखते हैं। परमेश्वर का वचन ही तो है जो आपको उद्धार दिलाता है, और परमेश्वर का यही वचन युग के अंत में दुष्ट का भी नाश करेगा। मेरे मित्रों, यह हमारे लिए क्या ही अद्भुत बात है कि हम उस अंतिम समय के बारे में सुनने और जानने पाते हैं। यह परमेश्वर का वचन है जो सत्य है, और इसको मुझे और आपको समझना है और मानना है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में परमेश्वर के उस न्याय को गंभीरता से लिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हम पापी थे, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। जीवन मिली मसीह